अगर किसी पुराने जमाने के एंटेने वाले टीवी को चालू करें ना, और किसी ऐसे चैनल पर लगाएं जहां कोई ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा हो, तो स्क्रीन पर एक अजीब सी झिलमिलाहट या स्नो दिखाई देती है, और साथ में एक हिसकी आवाज आती है।
हाँ, वही स्टैटिक आवाज जिसे हम अक्सर बस टीवी की खराबी मान लेते हैं।
बिल्कुल, लेकिन सच्चाई ये है कि वह सिर्फ एक मामूली स्टैटिक नहीं है। वह जो झिलमिलाहट है ना, उसका लगभग 3 से 10% हिस्सा दरअसल इस ब्रह्मांड के निर्माण के वक्त हुए विशाल धमाके की बची हुई गूंज है।
यानी सीधे बिग बैंग से आने वाली आवाज।
सही पकड़ा, ये एक सीधा संपर्क है उस घटना से जो करीब 13.7 अरब साल, या और सटीक तरीके से कहें तो 13.72 बिलियन साल पहले हुई थी। तो ठीक है, चलिए इस पर गहराई से विचार करते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम डॉक्टर पेरी फिलिप्स के एक बेहद दिलचस्प प्रेजेंटेशन पर चर्चा कर रहे हैं।
जिनके पास कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी है, उनका ये काम वाकई बहुत खास है।
हाँ, और उनका ये विश्लेषण इस बात पर प्रकाश डालता है कि बिग बैंग थ्योरी के मुख्य वैज्ञानिक आधार आखिर हैं क्या। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि डॉक्टर फिलिप्स विज्ञान और धर्म, विशेषकर बाइबल की मान्यताओं के बीच के संबंध को किस तरह देखते हैं,
जो कि एक बहुत बड़ा और थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक भी हो सकता है।
एग्जैक्टली, और इसीलिए इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात स्पष्ट करनी होगी, क्योंकि इस स्रोत में ईश्वर और सृष्टि के निर्माण जैसे धार्मिक विषय शामिल हैं, तो इस विश्लेषण का उद्देश्य किसी धार्मिक या राजनीतिक पक्ष का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। हमारा लक्ष्य सिर्फ डॉक्टर फिलिप्स के विचारों और उनके द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक डेटा को निष्पक्ष रूप से समझना है।
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत है, क्योंकि आमतौर पर जब भी ब्रह्मांड की शुरुआत या उसके निर्माण की बात आती है, तो एक आम धारणा ये बन जाती है कि विज्ञान और धर्म हमेशा एक दूसरे के विरोधी हैं।
हाँ, जैसे एक को मानने का मतलब दूसरे को पूरी तरह से नकारना होता है।
बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर फिलिप्स एक अलग ही नजरिया पेश करते हैं। वो इन दोनों को दुश्मन नहीं बल्कि एक दूसरे का पूरक मानते हैं। उनका तर्क ये है कि बिग बैंग थ्योरी ही वो सटीक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी जिसके द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ।
ये थोड़ा उलझाने वाला लगता है मुझे। मतलब एक वैज्ञानिक जो डेटा और प्रमाणों पर विश्वास करता है, वो ब्रह्मांड के वैज्ञानिक निर्माण और किसी ईश्वरीय शक्ति द्वारा निर्माण के बीच आखिर तालमेल कैसे बिठाता है? ये दोनों बातें एक ही वक्त पर सच कैसे हो सकती हैं?
इस उलझन को सुलझाने के लिए ना, डॉक्टर फिलिप्स ने सीएस लुईस के एक बहुत ही मशहूर चायदानी यानी टीपॉट वाले उदाहरण का सहारा लिया है। इसे एक दृश्य के रूप में देखते हैं। मान लीजिए एक चायदानी गैस पर रखी है और वह तेजी से उबल रही है, उसमें से सीटी बज रही है।
ठीक है,
अब अगर कोई पूछे कि यह चायदानी क्यों उबल रही है, तो इसका एक पूरी तरह से वैज्ञानिक जवाब दिया जा सकता है। जवाब होगा कि गैस जली, ऊष्मा का संचार चायदानी के पेंदे तक हुआ, उसने अंदर के पानी को गर्म किया, पानी का तापमान बढ़ने से कन्वेक्शन करंट्स बने,
और फिर पानी भाप में तब्दील हुआ, दबाव बढ़ा और सीटी बज गई।
हाँ, एकदम सटीक स्टेप बाय स्टेप वैज्ञानिक व्याख्या जिसमें कहीं कोई कमी नहीं है।
ये तो बिल्कुल ठीक है, किसी भी फिजिक्स के स्टूडेंट को यही जवाब देना चाहिए। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई जवाब हो सकता है जो उतना ही सच हो?
यही सबसे बड़ा पॉइंट है। एक दूसरा कारण भी है, चायदानी इसलिए उबल रही है क्योंकि मिसेज लुईस को दोपहर की चाय पीनी थी।
अच्छा, यानी इंटेंशन।
हाँ, अब ये एक बेहद साधारण रोजमर्रा जैसी व्याख्या है, लेकिन ये भी पूरी तरह से वैध और सच है। डॉक्टर फिलिप्स इस उदाहरण के जरिए समझाते हैं कि जब ये कहा जाता है कि ईश्वर ने ब्रह्मांड बनाया, तो वह उस चायदानी उबलने के पीछे के इरादे या इंटेंशन की तरह है,
और बिग बैंग वो गैस और भाप वाली प्रक्रिया होगी।
बिल्कुल, दोनों स्पष्टीकरण अपनी अपनी जगह सही है और एक दूसरे को काटते नहीं है।
ये एनालॉजी सच में बहुत गहरी है, लेकिन मेरे दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन आता है यहाँ। अगर किसी को पहले से ही पता हो कि पानी मिसेज लुईस की चाय के लिए उबाला जा रहा है, तो क्या उसे उस घटना के कैसे होने की उत्सुकता खत्म नहीं हो जाती?
एक वैलिड चिंता है।
मतलब अगर हम मान लें कि कोई ईश्वरीय शक्ति इसके पीछे है, तो वैज्ञानिक खोज की जरूरत ही कहां रह जाती है? क्या ये विज्ञान की प्रगति को रोकने जैसा नहीं है?
एकदम वाजिब सवाल है, पर डॉक्टर फिलिप्स के मुताबिक ऐसा होना जरूरी नहीं है। उनका मानना है कि कौन या क्यों, यानी हु एंड व्हाई, ये तय करना धर्म का क्षेत्र है, लेकिन वह निर्माण कैसे और कब हुआ, इन सवालों के जवाब ढूंढना पूरी तरह से विज्ञान का काम है।
यानी चाय बनाने की इच्छा ने भाप की वैज्ञानिक प्रक्रिया को रोका नहीं?
नहीं रोका, बल्कि उसे शुरू किया और उसे पढ़ने का अवसर दिया। डॉक्टर फिलिप्स कहते हैं कि बाइबल जैसी किताबें ये तो बताती हैं कि ब्रह्मांड क्यों बनाया गया, लेकिन उसका भौतिक निर्माण आखिर कैसे हुआ, मैकेनिक्स क्या थे, ये समझने के लिए तो टेलीस्कोप्स, इक्वेशंस और विज्ञान की सख्त जरूरत पड़ती है। इसलिए ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के साथ शांति से रह सकते हैं।
ठीक है, तो अगर हम इस इरादे वाले हिस्से को एक तरफ रख दें अभी और सिर्फ उस कैसे वाले हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें, तो विज्ञान के अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड आखिर शुरू कैसे हुआ? वो कौन सा डेटा है जो इस विशाल बिग बैंग की ओर इशारा करता है?
इसका सबसे पहला और सबसे ठोस वैज्ञानिक प्रमाण ब्रह्मांड के लगातार फैलने से मिलता है। इसकी शुरुआत करीब 1910-1912 के आसपास हुई थी। वेस्टो मेलविन स्लिफर नाम के एक वैज्ञानिक थे जो तारों और आकाशगंगाओं का घूमना नापने की कोशिश कर रहे थे।
ओके।
तब उन्होंने अपने डेटा में एक अजीब और चौंकाने वाली चीज देखी। उन्होंने पाया कि लगभग सारी की सारी आकाशगंगाएं उनसे दूर जा रही थीं।
ये तो उस वक्त के हिसाब से बहुत चौंकाने वाला होना चाहिए, क्योंकि तब तक तो वैज्ञानिक जगत में यही धारणा थी कि ब्रह्मांड स्थिर या स्टैटिक है।
बिल्कुल,
जैसे एक ठहरी हुई जगह जहां सब कुछ हमेशा से ऐसा ही है। अगर गैलेक्सीज मूव भी कर रही होती तो कुछ को दूर जाना चाहिए था और कुछ को हमारे पास आना चाहिए था।
वही धारणा तो टूटी यहाँ, सभी हमसे दूर भाग रही थी। इस घटना को समझने के लिए ना डॉपलर इफेक्ट को देखना होगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो और एक ट्रेन तेजी से हॉर्न बजाती हुई उसकी तरफ आ रही हो,
तो आवाज की तरंगें दबने लगती हैं और आवाज तीखी सुनाई देती है।
सही। और लाइट के संदर्भ में जब कोई तारा हमारे पास आता है तो उसके लाइट वेव्स दब जाती हैं और वह नीले रंग की तरफ खिसक जाती है, जिसे ब्लू शिफ्ट कहते हैं। पर जब वही ट्रेन दूर जाती है तो आवाज भारी और लंबी हो जाती है। ठीक वैसे ही जब गैलेक्सीज दूर जाती हैं तो उनकी लाइट की वेवलेंथ लंबी हो जाती है और लाल रंग की तरफ खिसक जाती है,
जिसे रेड शिफ्ट कहा जाता है।
हाँ, रेड शिफ्ट। स्लाइफर ने अपने डेटा में देखा कि सारी गैलेक्सीज रेड शिफ्ट दिखा रही हैं।
यानी हर दिशा में सब कुछ दूर जा रहा है। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यही वो वक्त था जब अल्बर्ट आइंस्टाइन भी अपने जनरल रिलेटिविटी के इक्वेशंस पर काम कर रहे थे, और ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टाइन को भी शुरू में लगा था कि ब्रह्मांड स्थिर ही होना चाहिए।
हाँ, वो स्टैटिक यूनिवर्स के आइडिया पर अटके थे।
वो अपने खुद के इक्वेशंस के नतीजे से इतने असहज थे कि उन्होंने मैट को बैलेंस करने के लिए उसमें एक नया फॉर्मूला डाल दिया था, है ना?
ये सच है। आइंस्टाइन के ओरिजिनल इक्वेशंस चीख चीख कर कह रहे थे कि ब्रह्मांड एक जगह ठहर नहीं सकता, उसे या तो फैलना पड़ेगा या ग्रेविटी के कारण सिकुड़ना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक फज फैक्टर, जिसे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहते हैं, जोड़ दिया ताकि ब्रह्मांड को कागज पर ठहरा हुआ दिखाया जा सके।
हा हा, जो कि बाद में उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई।
बिल्कुल, बाद में जॉर्ज लिमेट्रे ने उन इक्वेशंस को बिना किसी फज फैक्टर के सॉल्व किया और प्रस्तुत किया कि ब्रह्मांड फैल रहा है। फिर एडविन हबल आए, जिन्होंने टेलीस्कोप से देखकर साबित किया कि जो आकाशगंगा हमसे जितनी दूर है वह उतनी ही ज्यादा तेजी से हमसे दूर भाग रही है। इसे ही हबल का नियम कहते हैं।
वेट, जो चीज दूर है वो और भी तेजी से दूर जा रही है? ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। मतलब एक आम इंसान इस अंतरिक्ष के फैलने की कल्पना आखिर करे तो कैसे करे?
इसे समझने के लिए डॉक्टर फिलिप्स एक बहुत ही असरदार उदाहरण देते हैं, किशमिश वाली ब्रेड या रेजिन ब्रेड का। अगर किसी बर्तन में किशमिश मिली हुई ब्रेड का आटा गूंद कर रखा जाए, आटे के अंदर किशमिश हर जगह बिखरी हुई है।
ओके, दिमाग में पिक्चर बन गई।
अब जैसे जैसे वो आटा फूलता है, ब्रेड बड़ी होती है। ध्यान देने वाली बात ये है कि आटे के अंदर किशमिश चल फिर नहीं रही है, वो अपनी जगह पर रुकी हुई है, पर आटा खुद फैल रहा है।
अच्छा, इसलिए किशमिश खुद ब खुद एक दूसरे से दूर होने लगती है।
एग्जैक्टली। और जो किशमिश एक दूसरे से पहले से ही दूर थीं, उनके बीच का आटा और ज्यादा फैलता है, इसलिए उनके बीच की दूरी और भी तेजी से बढ़ती है। यही ब्रह्मांड के साथ हो रहा है। गैलेक्सीज अंतरिक्ष के अंदर मूव नहीं कर रही, बल्कि वो अंतरिक्ष या स्पेस खुद ही रबर की तरह खींच रहा है।
वाओ, ये किशमिश और आटे वाला उदाहरण दिमाग में आकाशगंगाओं की मूवमेंट को एकदम साफ कर देता है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल पैदा होता है मेरे मन में। ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज हैं, उनका इतना विशाल मास है, तो उनके बीच के ग्रेविटी भी तो एक दूसरे को खींच रही होगी ना?
हाँ, बिल्कुल।
जैसे अगर आसमान में पूरी ताकत से गेंद उछाली जाए तो शुरू में तेजी से ऊपर जाती है, पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी गति धीमी पड़ती है और अंततः वो नीचे आती है।
हाँ,
ठीक उसी तरह इस ब्रह्मांड के फैलने की गति को भी समय के साथ धीमा पड़ जाना चाहिए था, है ना?
यहाँ आकर विज्ञान का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला रहस्य सामने आता है। 2000 के दशक की शुरुआत में ना MIT और कैलिफोर्निया की कुछ रिसर्च टीम्स ने बिल्कुल यही नापने की कोशिश की थी कि ब्रह्मांड के फैलने की गति कितनी धीमी हो रही है।
और नतीजा क्या निकला?
उनका डेटा एकदम उल्टा निकला। उन्होंने पाया कि फैलने की गति धीमी नहीं हो रही है, बल्कि वह लगातार तेज हो रही है, यानी एक्सपेंशन एक्सेलरेट कर रहा है।
क्या बात कर रहे हो? ये तो ऐसा हुआ जैसे आसमान में उछाली गई गेंद ऊपर जाए और उसकी स्पीड कम होने की बजाय आसमान की तरफ और बढ़ती चली जाए। ये कैसे संभव है? ग्रेविटी के नियम तो इसकी इजाजत नहीं देते।
यही बात वैज्ञानिकों की नींद उड़ाए हुए है। इसे एक ऐसी अज्ञात ऊर्जा का नाम दिया गया है जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। ये एक ऐसी छिपी हुई शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में भरी हुई है और गुरुत्वाकर्षण के ठीक विपरीत काम कर रही है।
यानी ये अंतरिक्ष को बाहर की तरफ धकेल रही है।
हाँ, बहुत तेजी से। डॉक्टर फिलिप्स मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि ये ऐसी खोज थी मानो ब्रह्मांड वैज्ञानिकों को चिढ़ा रहा हो और कह रहा हो कि तुम्हें क्या लगा, आइंस्टाइन और हबल के बाद तुमने सब समझ लिया, अभी तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ बाकी है।
वाकई हम अभी भी ब्रह्मांड की किताब के पहले चैप्टर पर ही हैं ऐसा लगता है। अगर थोड़ी देर के लिए पीछे मुड़कर देखा जाए तो एक लॉजिकल सवाल उठता है यहाँ पर। अगर आकाशगंगाएं आज हमसे दूर जा रही हैं तो इसका मतलब है कल वो हमारे थोड़ा पास रही होंगी।
सही बात है।
और एक साल पहले और भी पास। तो अगर इस पूरी प्रक्रिया को रिवर्स गियर में डालकर 13.7 अरब साल पीछे ले जाया जाए तो सब कुछ एक बेहद छोटे और अत्यधिक गर्म बिंदु में सिमट जाएगा। पर अगर ऐसी किसी भयानक गर्मी से बिग बैंग शुरू हुआ था तो उस असहनीय गर्मी का कोई ना कोई सुराग तो आज भी होना चाहिए।
एकदम ठीक पकड़ा। और ये सुराग ढूंढना ही अगली बड़ी चुनौती थी। जॉर्ज गैमाओ नाम के एक दूरदृष्टि वाले वैज्ञानिक ने इसके लिए कैंपफायर का एक बहुत ही सरल और असरदार उदाहरण दिया था।
कैंपफायर? वहाँ कैसे?
अगर कोई व्यक्ति जंगल में किसी ऐसी जगह जाए जहाँ पिछली रात किसी ने आग जलाई हो और अब वह आग पूरी तरह बुझ चुकी हो, लेकिन वहाँ बचे हुए कोयले और पत्थर अगर अभी भी छूने पर गर्म महसूस होते हैं तो किसी को भी तुरंत समझ आ जाएगा कि यहाँ जरूर एक कैंपफायर जलाई गई थी।
हाँ, यानी बची हुई गर्मी।
हाँ, गमोव का मानना था कि बिग बैंग की भी ऐसी ही एक बची हुई ऊष्मा या गर्मी होनी चाहिए जो आज पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी होगी। इसे वैज्ञानिक भाषा में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या CMB कहते हैं।
और इस बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज की कहानी सच में किसी कॉमेडी फिल्म से कम नहीं है। मतलब एक तरफ बड़े बड़े थियोरेटिकल फिजिसिस्ट इसे पेपर पे ढूंढ रहे थे और दूसरी तरफ 1964 में बेल लैब्स के दो वैज्ञानिक पेंजियस और विल्सन कुछ अलग ही कर रहे थे।
हाँ, वो एक विशाल हॉर्न एंटेना पे काम कर रहे थे ताकि रेडियो कम्युनिकेशन को बेहतर किया जा सके, लेकिन वो लगातार एक अजीब सी हिस की आवाज से परेशान थे।
एक बैकग्राउंड नॉइज जो एंटेना में रुक ही नहीं रही थी।
बिल्कुल। और वो इस नॉइज से इसलिए परेशान थे क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आवाज आ कहां से रही है। अगर वो आवाज न्यूयॉर्क शहर से आ रही होती तो एंटेना की दिशा बदलने पर आवाज कम या ज्यादा होती, पर आवाज हर दिशा से बराबर आ रही थी। दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, वो हिस एक जैसी थी।
तो उन्होंने क्या किया?
उन्होंने आसपास की सारी मशीन्स चेक की, फिर उन्होंने देखा कि एंटीना के एक हिस्से में कुछ कबूतरों ने घोंसला बना लिया है और वहां उनकी बीट यानी पिजन डंग पड़ी हुई है।
ओहो, कबूतर की बीट।
हाँ, और मजे की बात यह है कि अपने रिसर्च पेपर में उन्होंने इस बीट को बड़ी मर्यादा के साथ व्हाइट डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल लिखा था। उन्हें पूरा यकीन था कि इन कबूतरों की वजह से ही एंटीना खराब हो गया है और ये नॉइज आ रही है।
और फिर उन्होंने उन कबूतरों को भगाया, पूरा एंटीना साफ किया होगा, पर वो आवाज और झिलमिलाहट फिर भी बंद नहीं हुई होगी क्योंकि वो किसी मशीनरी का फॉल्ट या कबूतरों की बीट थी ही नहीं।
सही कहा। वो आवाज दरअसल पिछले लगभग 14 अरब सालों से पूरे ब्रह्मांड में बहते आ रहे बिग बैंग के उस रेडिएशन की गूंज थी जो सीधे उनके एंटेना से टकरा रही थी। बिना जाने ही उन्होंने बिग बैंग की उस बची हुई कैंप फायर को ढूंढ निकाला था।
यह सच में किस्मत की बात थी।
बाद में नासा के कोबे, WMAP और प्लैंक जैसे एडवांस सैटेलाइट्स ने अंतरिक्ष में जाकर इस रेडिएशन को प्रमाणित किया और इसका एक सटीक तापमान माप बनाया, और जब इस डेटा को गहराई से एनालाइज किया गया तो एक और हैरानीय सच्चाई सामने आई।
वो सच्चाई क्या थी?
पर सच्चाई ये थी कि इस रेडिएशन की कैलकुलेशंस ने ये साबित कर दिया कि ये पूरा ब्रह्मांड जिस चीज से बना है उसमें बैरियोनिक मैटर यानी वो ऑर्डिनरी तत्व जिनसे धरती बनी है, हमारे शरीर बने हैं, तारे और आकाशगंगाएं बनी हैं, वह सिर्फ और सिर्फ 4% है।
सिर्फ 4%? ये सुनकर किसी का भी दिमाग रुक सकता है। वह सब कुछ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, केमिस्ट्री की पूरी पीरियोडिक टेबल, वह सब मिलकर सिर्फ 4%। तो बाकी का 96% आखिर कहाँ है?
बाकी का 13% डार्क मैटर है। ये एक ऐसा मैटर है जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं है, पर इसकी अपनी ग्रेविटी होती है जिसकी वजह से गैलेक्सीज आपस में जुड़ी रहती हैं, वरना वह बिखर जाती। और बचा हुआ 73% हिस्सा वही रहस्यमयी डार्क एनर्जी है जो ब्रह्मांड को तेजी से फैला रही है।
इसका मतलब यह है कि इस विशाल ब्रह्मांड का 96% हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है। इस तथ्य को सुनकर वाकई इंसान की हैसियत बहुत छोटी महसूस होती है।
ये एक बहुत ही गहरी सच्चाई है, हम ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जानते हैं।
तो अगर अब तक के डेटा का निष्कर्ष निकालें, ब्रह्मांड लगातार तेजी से फैल रहा है और हमने उसके शुरुआती विशाल धमाके की बची हुई गर्मी को भी ढूंढ लिया है। पर यहां एक नई कड़ी गुमनाम है। ब्रह्मांड गर्म था और फैल रहा था, पर वह जो 4% मैटर है, हाइड्रोजन, हीलियम और बाकी तत्व, वह आखिर उस भयानक महाविस्फोट के आग में बने कैसे?
इस सवाल का जवाब देने के लिए बिग बैंग की थ्योरी उस समय की कल्पना करती है जब धमाके को हुए सिर्फ शुरुआती 3 मिनट बीते थे।
सिर्फ पहले 3 मिनट?
हाँ, जब तापमान थोड़ा सा कम हुआ यानी खरबों डिग्री से थोड़ा नीचे आया, तब सबसे पहले और सबसे हल्के तत्व बने, हाइड्रोजन और हीलियम। बाकी के भारी तत्व तो अरबों साल बाद तारों के अंदर बने। और इस वैज्ञानिक मॉडल के साथ ना एक बहुत ही मजेदार किस्सा जुड़ा हुआ है।
कैसा किस्सा?
जॉर्ज गैमाओ, जिन्होंने CMB का आइडिया दिया था, उन्होंने ही जब इन तत्वों के बनने की थ्योरी पर अपना पेपर लिखा तो उसमें उनके साथ रैल्स अल्फर का नाम था। लेकिन गैमाओ थोड़े शरारती स्वभाव के वैज्ञानिक थे। उन्हें लगा कि पेपर के लेखकों में अल्फर और गैमाओ थोड़ा अधूरा सा लग रहा है।
तो उन्होंने क्या किया?
उन्होंने अपने एक दोस्त और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के मशहूर वैज्ञानिक हांस बेते का नाम भी उस पेपर में उनसे पूछे बिना ही डाल दिया।
ये तो सीधे तौर पर एकेडमिक दुनिया में फ्रॉड जैसा माना जा सकता है। क्या हांस बेते का उस पेपर में सच में कोई बड़ा योगदान था?
कोई योगदान नहीं था। बेते ने एक लाइन की भी कैलकुलेशन नहीं की थी। गामोव ने सिर्फ इसलिए उनका नाम डाला ताकि उस पेपर के लेखकों का सीक्वेंस अल्फा बेटे गामा पढ़ा जाए। उनका शौक था कि ये नाम ग्रीक वर्णमाला के पहले 3 अक्षर अल्फा बेटा गामा की तरह सुनाई दे।
ये दिखाता है कि वैज्ञानिक कितने भी बड़े जीनियस क्यों ना हो, उनके अंदर एक छोटा बच्चा हमेशा जिंदा रहता है। खैर, इस मजाक से थोड़ा आगे बढ़कर इन तत्वों की प्रॉपर्टीज को देखें तो हाइड्रोजन और हीलियम के गुण अपने आप में काफी विपरीत हैं, है ना?
हाँ, बिल्कुल।
हाइड्रोजन अत्यधिक विस्फोटक होती है। इतिहास में हिंडनबर्ग एयरशिप का हादसा शायद बहुत लोगों को याद हो, जहां हाइड्रोजन से भरे एक विशाल गुब्बारे में आग लग गई थी और वह पल भर में पूरी तरह तबाह हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हीलियम बिल्कुल ज्वलनशील नहीं है और मेलों में पार्टी वाले गुब्बारों में इसका इस्तेमाल होता है। तो उन शुरुआती 3 मिनटों में इनका निर्माण किस प्रपोर्शन में हुआ?
वह प्रपोर्शन ही सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रमाण है। 2 हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स को आपस में फ्यूज करके हीलियम बनाने के लिए असीम गर्मी की जरूरत होती है। ये आसान प्रक्रिया नहीं है क्योंकि प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी दूर धकेलते हैं।
तो उन्हें जबरदस्ती जोड़ने के लिए बिग बैंग जैसी भयानक गर्मी चाहिए थी।
सही, बिग बैंग थ्योरी ने मैथ के जरिए एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने हिसाब लगाया कि उस भयानक गर्मी के हिसाब से जितना भी हाइड्रोजन हीलियम में बदला होगा, आज ब्रह्मांड में टोटल मैटर के मास के अनुसार लगभग 25% हीलियम होना चाहिए और बाकी हाइड्रोजन।
और जब वैज्ञानिकों ने आज के समय में आधुनिक टेलीस्कोप से गैलेक्सीज और जुपिटर, सैटर्न जैसे बड़े गैस प्लैनेट्स को देखा तो उन्हें क्या मिला?
उन्हें लगभग ठीक 25% हीलियम ही मिला। मैथ और एक्चुअल प्रमाण एकदम सटीक बैठे।
वाह, पर यहां मैं थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूंगा एक स्केप्टिक के नजर से। किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या ये महज एक इत्तेफाक या संयोग नहीं हो सकता, जैसे थियरी ने एक तुक्का लगाया और डेटा गलती से मैच कर गया।
ये बहुत ही वैलिड सवाल है। अगर सिर्फ एक ही दिशा में कोई भविष्यवाणी सच होती तो उसे इत्तेफाक या तुक्का कहा जा सकता था। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि तीन बिल्कुल अलग अलग दिशाओं से वैज्ञानिक स्तंभ खड़े हुए हैं। पहला हबल का ब्रह्मांड के फैलने का फॉर्मूला, दूसरा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की झिलमिलाहट और तीसरा ठीक 25% हीलियम की मात्रा।
तीनों इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से?
हाँ, तीनों के मापने के तरीके अलग हैं, पर तीनों एक ही नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि ब्रह्मांड एक गर्म बिंदु से फटा था। जब तीन अलग अलग और स्वतंत्र सबूत एक ही थ्योरी की पुष्टि करें तो वह संयोग नहीं रहता, वह एक अकाट्य वैज्ञानिक मॉडल बन जाता है।
इन तीनों वैज्ञानिक स्तंभों की गहराई को समझने के बाद ना ये विश्लेषण अपने सबसे दिलचस्प और थोड़े दार्शनिक पड़ाव पर आ जाता है। डॉक्टर फिलिप्स ने इन सारे वैज्ञानिक प्रमाणों को पेश करने के बाद जो बात सबसे मजबूती से रखी है वो ये है कि क्या ये सब जानने के बाद विज्ञान और बाइबल के सृष्टि निर्माण की कहानी के बीच लड़ाई देखी जानी चाहिए या फिर इनमें कोई गहरा संबंध है।
डॉक्टर फिलिप्स इस बात को पूरी तरह खारिज करते हैं कि इनमें लड़ाई है। उनका जोर इस बात पर है कि ये दोनों आपस में काफी हद तक मेल खाते हैं। इस सोच को समझाने के लिए वे बाइबल के प्रोवर्ब्स यानी नीति वचन का हवाला देते हैं जिसमें लिखा है कि किसी भी चीज को छिपाना ईश्वर की महिमा है।
पर यहाँ छिपाने का मतलब लोगों को धोखा देना नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी तुलना उन्होंने ईस्टर एग से की है। जिस तरह त्योहार पर पेरेंट्स बच्चों के ढूंढने के लिए ईस्टर एग किसी सेफ जगह छुपाते हैं ताकि बच्चे उन्हें खोजकर खुश हो सके, वैसे ही ईश्वर ने सृष्टि के निर्माण के वैज्ञानिक रहस्य इस ब्रह्मांड के भीतर छिपाए हैं ताकि इंसान अपनी मेहनत, मंत्र और विज्ञान की मदद से उन्हें खोज सके।
और इस खूबसूरत खोज में सिर्फ धार्मिक लोग ही शामिल नहीं है, इसमें ऐसे एग्नोस्टिक लोग भी शामिल हैं जो ईश्वर के होने या ना होने पर कोई पक्का दावा नहीं करते। डॉक्टर फिलिप्स ने अपने पेपर में नासा के साथ काम कर चुके एक महान खगोल शास्त्री रॉबर्ट जस्ट्रो का बड़ा ही दिलचस्प जिक्र किया है।
हाँ, जस्ट्रो खुद को एग्नोस्टिक मानते थे,
पर उन्होंने अपनी किताब गॉड एंड द एस्ट्रोनॉमर्स में लिखा है कि एस्ट्रोनॉमिकल डेटा सीधे तौर पर एक ऐसे समय की ओर ले जाता है जब प्रकाश और ऊर्जा के एक विशाल अचानक धमाके के साथ इस दुनिया की शुरुआत हुई। और जस्ट्रो निष्पक्ष रूप से ये मानते थे कि ये अचानक शुरुआत वाला वैज्ञानिक विवरण बाइबल के जेनेसिस के पहले अध्याय की कहानी से बहुत ज्यादा मेल खाता है।
हाँ, और जस्ट्रो की किताब में इस बात की हैरानी भी साफ झलकती थी कि उनके कुछ वैज्ञानिक साथी इस डेटा को स्वीकार करने से कतरा क्यों रहे हैं। उनका मानना था कि एक अचानक शुरुआत की वैज्ञानिक खोज अपने आप में ही सृष्टि के निर्माण की एक अलौकिक परिकल्पना के बेहद करीब है।
यही वो मुद्दा है जहां डॉक्टर फिलिप्स एक सीधा प्रश्न पूछते हैं कि अगर एक एग्नोस्टिक व्यक्ति इन वैज्ञानिक प्रमाणों और बाइबल की शुरुआत की कहानी में ऐसी समानता देख सकता है तो ईसाइयों को विज्ञान के इन ठोस आधारों को स्वीकार करने में मुश्किल क्यों होनी चाहिए। ये नजरिया सच में दोनों पक्षों को साथ मिलकर ब्रह्मांड के सच को ढूंढने के लिए प्रेरित करता है।
तो अगर हम इन सारे विशाल जानकारियों को एक साथ जोड़कर देखें तो हमने मूल रूप से बिग बैंग की पुष्टि करने वाले तीन मुख्य स्तंभों को समझा। पहला था ब्रह्मांड का फैलना, जिसका पता रेड शिफ्ट से चलता है। दूसरा था कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, जो उस महाविस्फोट की बची हुई ऊष्मा है। और तीसरा था शुरुआती 3 मिनट में बनी हाइड्रोजन और हीलियम की ठीक 25% मात्रा। इन तीनों सबूतों ने मैथ और फिजिक्स के जरिए इस बात पर पक्की मुहर लगाई कि लगभग 13.7 अरब साल पहले एक अत्यंत छोटे, घने और बेहद गर्म बिंदु से इस विशाल ब्रह्मांड का एक अनंत सफर शुरू हुआ था।
इस चर्चा का सबसे बड़ा असर ये है कि अब आम चीजों को देखने का दिमागी नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। एक आम झिलमिलाहट भी अब मामूली नहीं लगेगी। अगर अगली बार नजर पुरानी टीवी स्क्रीन की उस स्नो पर पड़े या हवा में उड़ता हुआ हीलियम का गुब्बारा नजर आए तो याद आएगा कि वो 14 अरब साल पुराने एक महाविस्फोट से जुड़े हैं। लेकिन इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक ऐसा ख्याल या रहस्य चर्चा के लिए छोड़ना जरूरी है जो सच में किसी का भी दिमाग चकरा सकता है।
वो आखिरी रहस्य क्या है?
डॉक्टर फिलिप्स के इस पूरे लेख पर ध्यान देने के बाद ना एक बहुत ही गहरा और सुलझाने में असंभव लगने वाला रहस्य सामने आता है।
विज्ञान और फिजिक्स के मूल नियम कहते हैं कि जब बिग बैंग जैसी इतनी अत्यधिक एनर्जी मैटर में बदलती है तो वहां पार्टिकल्स यानी कण और एंटी पार्टिकल्स यानी प्रतिकण दोनों बिल्कुल बराबर मात्रा में बने होंगे।
हाँ, फिजिक्स का कंजर्वेशन लॉ यही कहता है।
नियम कहता है कि जब भी एक ऑर्डिनरी कण और एक प्रतिकण आपस में टकराते हैं तो वह एक दूसरे को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं और वहां सिर्फ प्योर एनर्जी बचनी चाहिए थी। अगर सच में ऐसा हुआ होता तो शुरुआती कुछ माइक्रोसेकंड्स में ही सब नष्ट हो जाना चाहिए था। ना कोई गैलेक्सी होती, ना तारे, ना धरती और ना इंसान।
ब्रह्मांड में मैटर जैसा कुछ भी नहीं बचना चाहिए था।
लेकिन आज हम यहाँ हैं, सब कुछ यहाँ मौजूद है। इसका सिर्फ एक ही वैज्ञानिक मतलब निकलता है, वह यह कि उस धमाके के समय किसी अज्ञात कारण से पार्टिकल्स की संख्या एंटी पार्टिकल्स के मुकाबले जरा सी ज्यादा थी। एक अनुमान के मुताबिक हर एक अरब एंटी पार्टिकल्स के मुकाबले एक अरब और एक मैटर का कण था।
यानी हर बिलियन के मुकाबले एक एक्स्ट्रा पार्टिकल।
हाँ, वह एक अरब कण आपस में टकरा के नष्ट हो गए, लेकिन वह अकेला एक मैटर का कण बच गया और उसी अकेले बचे हुए अंश से आज के सारे तारे, ग्रह और हमारा निर्माण हुआ है।
ये तो सच में दिमाग घुमाने वाली बात है,
है ना?
ये ध्यान देने वाली बात है कि आखिर ब्रह्मांड में कुछ नहीं के बजाय कुछ क्यों बचा रह गया। आखिर वह थोड़ा सा ज्यादा मैटर आया कहां से? क्या वह सिर्फ एक एरर था या फिर वह एक ऐसा छिपा हुआ ईस्टर एग है जिसे इंसानियत अभी भी समझने की कोशिश कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाली पीढ़ियां विज्ञान और दर्शन के बीच सामंजस्य बिठाकर ही ढूंढ पाएंगी।